हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनामिका ने जल्दी ही अपने घर की पिछले 20 सालों की पूरी कॉल डिटेल्स निकलवाना शुरू कर दिया। तभी उसमें उसे एक नंबर नजर आया। वो नंबर कहीं और का नहीं बल्कि मुंबई का था। वो नंबर देखकर अनामिका को हैरानी हुई, क्योंकि उस नंबर से कई बार कॉल तो आई थी लेकिन एक भी दिन किसी से कोई बात नहीं हुई थी। अनामिका का दिमाग जोरों से चलने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसके पिता ने ही वो कॉल किया होगा, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, इसीलिए वो बिना अपने दादाजी को बताए मुंबई आ गई। लेकिन जैसे ही उसके दादाजी को पता चला कि उनकी पोती घर पर नहीं है, उन्हें अजीब सा डर सताने लगा। उन्हें ये भी डर था कि अगर ये बात पूरे साम्राज्य में फैल गई तो न जाने कितने लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं और अनामिका को अकेला पाकर उसकी जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने इंटरनेशनल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सबसे मजबूत बॉडीगार्ड्स को अपनी पोती अनामिका को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेज दिया। वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही थे जिनसे झलक ने अनामिका की जान बचाई थी। असल में वे लोग दादाजी के भेजे हुए आदमी थे जो अनामिका को वहां से सही सलामत लेकर जाने के लिए आए थे, लेकिन झलक ने आकर उनका पूरा प्लान ही चौपट कर दिया था। और ये भी सच था कि अनामिका, जो अपने पिता की तलाश में असल में मुंबई गई थी, वहीं उसकी मुलाकात झलक से हो गई थी। उसी दिन झलक का सच बाहर आने के बाद, जब उसके पिता, जो उस वक्त जेल में मौजूद थे, उन्होंने टीवी पर नैना ओबेरॉय को झलक को नाजायज कहते हुए देखा, तो उन्हें एक बार फिर ब्रेन स्ट्रोक आने लगे थे। वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे थे। उसी वक्त उन्हें उसी अस्पताल में एडमिट कराया गया था जिस अस्पताल में झलक मौजूद थी। उसी समय उन्हें डिस्चार्ज कराकर वहां से ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने झलक को भागते हुए देखा, उनके अंदर का पिता जाग उठा। उन्होंने दौड़कर झलक की जान बचा ली। वहीं अनामिका ने जैसे ही उस चेहरे को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, और फिर ये सुनकर कि वही झलक के पिता हैं, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अनामिका ने पूरी सिचुएशन और सारी बातों को अच्छी तरह समझते हुए झलक को अपनी बहन के रूप में, जिसे वो पहले ही मान चुकी थी, दिल से स्वीकार कर लिया। साथ ही आरव मल्होत्रा को भी उनकी गलती के लिए माफ़ कर दिया था। झलक सांसें थामकर अनामिका की बातें सुन रही थी। फिलहाल उसने सारा सच जानने के बाद गहरी सांस ली, क्योंकि इस वक्त अनामिका का चेहरा पूरी तरह से शांत था। झलक को सारा सच बताने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तभी झलक ने अनामिका से कहा था, मुझे यकीन ही नहीं आता अनामिका, तुम इतनी मजबूत हो, तुम आज मुझे अपनाने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए कि मुझ पर नाजायज़ होने का ठप्पा लगा है। भले ही मैं नाजायज़ की निशानी नहीं थी, लेकिन पूरे समाज की नज़रों में मैं नाजायज़ हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तुम मुझे मान सम्मान देना चाहती हो, मुझे प्यार देना चाहती हो। तुम क्या हो अनामिका? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दिल में एक बार फिर जीने की इच्छा जगाना चाहती हो और चाहती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन मैं कैसे जीऊँ अनामिका? मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है? किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे चारों तरफ से तोड़ने में। झलक की बात सुनकर अनामिका ने झलक के कंधे पर हाथ रखा और उसकी ओर देखकर बोली, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त संभलने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हें संभलना होगा झलक। तुम्हें हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए खुद को संभालना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे बहुत मुश्किलों से एक बहन मिली है और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, अपने छोटे छोटे सपने पूरे करना चाहती हूँ। और तुम मुझे वादा करो कि तुम अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी, क्योंकि तुम्हारी ये ज़िंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। वैसे भी तुम अपनी पहली ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी हो, अब इस ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ झलक, सिर्फ मेरा। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे ये अधिकार नहीं छीनोगी। ये कहते हुए अनामिका अचानक से सिसक पड़ी थी। झलक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी सिचुएशन में कैसे खुद को संभाले। उसे इतने सारे सच एक साथ पता चल रहे थे। सबसे बड़ा सच ये था कि जिस नाजायज़ होने का ठप्पा पूरे समाज ने उसके माथे पर लगाया था, असल में वो नाजायज़ थी ही नहीं। ये सारी बातें झलक को बेहद अजीब लग रही थीं। वो सोच रही थी कि कोई इंसान इतना घटिया और गिरे हुए कैसे हो सकता है। फिर झलक ने अनामिका को देखकर कहा, अनामिका, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि अभी फ़िलहाल मैं अकेला रहना चाहती हूँ। अनामिका ने झलक के आंसू पोंछे, उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्के से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, ठीक है ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, वैसे भी तुमने कुछ खाया नहीं है, उसके बाद हम दोनों आराम से बात करेंगे। ये कहकर अनामिका वहां से बाहर आ गई। झलक ने अंदर से कमरे की कुंडी बंद कर ली। वहीं दादाजी और आरव दरवाजे के बाहर खड़े थे। दादाजी ने आंखों ही आंखों में अनामिका से सवाल किया तो अनामिका इशारे से उन्हें वहां से बुलाकर सीधी हॉल में ले आई। अनामिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि झलक इमोशनली पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। ऐसे हालात में ये सब समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, हमें उसे वक्त देना होगा। और आप जानते हैं दादाजी, झलक बहुत अच्छी है, बहुत निडर है, बहुत बिंदास है। सच कहूँ तो उसकी जैसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी।
कभी कभी तो मुझे उसमें आपकी झलक नजर आती है, जिस तरह आप हमेशा मरने काटने को तैयार रहते हैं, बिल्कुल वैसी ही है वो। लेकिन सब लोगों ने मिलकर उसे चारों तरफ से तोड़ दिया, यहां तक कि उसके जीने की इच्छा भी खत्म कर दी। हमें धीरे धीरे उसे ठीक करना होगा, उसके दिल से सारी नफरत निकालनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एकदम ठीक हो जाएगी, और आप देखना, वो आपका ही न्यू वर्जन है। ये सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए, बोले, चलो अच्छा है। वैसे भी तुम खुद भी बिल्कुल आरव की जैसी हो, सेंसिटिव हो, लेकिन कम से कम इस घर में मेरे जैसा दबंग कोई तो है। ये कहकर दादाजी खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, बस अब हमसे दूर मत जाना मेरे बच्चे, ये बूढ़ा शरीर तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अनामिका ने भी आगे बढ़कर अपने दादाजी को गले से लगा लिया और मुस्कुराकर बोली, अरे दादाजी, अब आपके बूढ़े होने के नहीं, जवान होने के दिन आ गए हैं। वैसे भी अब आपकी दो दो पोतियां हैं जो आपके साथ रहने वाली हैं। अब देखिए हम सब मिलकर कितना धमाल मचाते हैं। ये सुनकर दादाजी मुस्कुरा उठे, बोले, ये भाषा बिल्कुल मेरी जैसी है। तभी अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये मेरी नहीं, झलक की भाषा है, मैंने उसी से सीखी है। देखना दादाजी, मेरी बहन आ गई है, हम साथ में कितनी ही मस्ती करेंगे। और फिर अनामिका मायूस चेहरे के साथ बोली, फिलहाल झलकते दुख को कम करने के लिए हमें झलक को पहले मजबूत बनाना होगा, क्योंकि झलक जिस सिचुएशन से गुजर रही है उसके लिए हमें उसका पूरी तरह से सहारा बनना होगा। ये सुनकर आरव जी की आंखें भर आई, वो आगे बढ़े, अनामिका के सिर पर हाथ रखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, सच में बहुत हिम्मत वाली हो तुम। ये कहकर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। तभी अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, आप नहीं जानते आपके इस प्यार को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। दिन रात एक कर दिया था आपको ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं भी आपका कोई पता नहीं चला। फिलहाल दिग्विजय मल्होत्रा ने आगे बढ़कर अनामिका के माथे को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, तूने सब ठीक कर दिया, सब कुछ। मेरी बच्ची तो महान है, और महान है तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया। ये बोलकर कहीं ना कहीं उनकी आंखें भर आई थीं। लेकिन अनामिका ने मन ही मन सोचा था,
मेरे पिताजी तो एक झूठे केस के चलते जेल में बंद थे, लेकिन मेरी माँ तो मुझे जानबूझकर होश हवास में छोड़कर गई थी। उन्हें तो कम से कम मेरे लिए रुकना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अनामिका ने सारी चीजों को मन में दबाकर कबूल कर लिया था। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों।